आप सब मेरे पीछे बोल बोल सकते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम् श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज नृसिंह चतुर्दशी है और आज इस महान अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं भगवान नृसिंहदेव के प्राकट्य के विषय में कुछ श्रवण करने के लिए। तो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और आगे आ सकते हैं, भक्त जो पीछे बैठे हैं वे आगे आ सकते हैं। तो हमने देखा भगवान आज इस पवित्र दिन पर इस धराधाम में प्रकट होते हैं। विशेष रूप से स्थान है जहां भगवान प्रकट होते हैं, ये भगवान की जो लीला है ये उच्चतर लोकों में स्वर्ग लोक में जहां इंद्र का निवास है वहां ये भगवान की लीला प्रकट हुई थी। और इस पृथ्वी में भी ऐसे बहुत सारे धाम हैं, जैसे हम देखते हैं सिंहाचलम धाम है जहां भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए और भगवान विशेष कृपा करके श्री धाम मायापुर में भी भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। अभी हमने देखा भगवान का अभिषेक। तो भगवान का जो प्राकट्य है इस जगत में सब लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। जब हम कहते हैं भगवान यहां इस जगत में आते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते। अधिकांश ऐसे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व में विकास भगवान के अस्तित्व में ही विकास नहीं विश्वास नहीं करते। आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है जिससे हमारा पूरा वर्तमान जगत प्रभावित है, उनका यह पूरा विचार है भगवान है ही नहीं, नास्तिकवाद है, एथिस्ट। इसलिए वे नए नए दर्शन प्रदान करते हैं जिससे स्थापित हो सके कि भगवान नहीं है। वास्तव में जो विज्ञान है उसका उद्देश्य है परम सत्य की जिज्ञासा करना, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य क्या है उसकी खोज करना। इसी से इस विज्ञान का प्रारंभ हुआ मध्यकालीन युग में, जब ऐसे बहुत सारी प्रचलित भूल धारणाएं थी। और हम देखते हैं चर्च, उसका दबदबा था। तो ये जो विज्ञान इस तरह से प्रारंभ हुआ परम सत्य की खोज करना, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इसी खोज में हमने परम सत्य के अस्तित्व को नकार दिया है। तो हम बार बार चर्चा करते हैं स्कूल में, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं डार्विन थियरी और बिग बैंग थियरी, कि एक विस्फोट हुआ और उससे सृष्टि हो गई और जो जीव है चेतना है उसकी उत्पत्ति का क्या स्रोत है, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या कारण है, कोई कारण नहीं है, बाय चांस बस ऐसे ही ये उत्पत्ति हो गई। जड़ पदार्थों का अपने आप मिश्रण हुआ और जड़ पदार्थ कहां से आए वो भी कहीं से आए। तो इस तरह से इस जगत में ये पूरी विचारधारा है कि भगवान नहीं है। और आज वर्तमान समय में केवल स्थिति यहां तक सीमित नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है मतलब नास्तिक विचार है, एथिस्ट। लेकिन यह विचारधारा भी धीरे धीरे पूरा प्रभावित हो रही है कि भगवान को मानना यह बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान के अस्तित्व में जो विश्वास करते हैं तो उनका वे पूरा विरोध करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पुस्तक पब्लिश कर रहे हैं, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, सब बहुत प्रभावित हैं। तो उन्होंने पुस्तक लिखी गॉड डिल्यूजन, कि भगवान एक भ्रम है। तो केवल अपने तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व में स्वीकार करना ये मूर्खता है और ये जगत के लिए बहुत बड़ी आपत्ति है। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भी धर्म के विषय में कहा, जैसे कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा कि ये धर्म जो है ये प्रजा के लिए अफीम के समान है, ओपियम, ये नशा है। तो ये बहुत सारी ऐसी भूल धारणाएं जगत में प्रचलित हैं, तो उनके लिए ये समझना कि भगवान इस जगत में आते हैं बहुत बड़ी चुनौती है। और विशेष रूप से अगर हम कहें कि आज भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं, और भगवान नृसिंहदेव कौन है, अर्ध सिंह अर्ध मानव, कि भगवान है और भगवान ऐसे रूप में यहां पर प्रकट हुए हैं, तो ये बहुत ही उनके लिए विचारणीय विषय है, उनको आश्चर्यचकित कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वैदिक शास्त्रों से हम समझ पाते हैं कैसे भगवान नृसिंहदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुषम परमम दिव्यम। इसीलिए भगवान नृसिंहदेव इस रूप में प्रकट हुए हैं, यही प्रमाण है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज भारत में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूं, उसकी कमी नहीं है। हर शहर में हर गांव में एक व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान घोषित करता है, एक बाबा है, एक बापा है, एक दादा है जो कहने के लिए तत्पर है। हम देखते हैं अम्मा भगवान, दादा भगवान, ऐसे सब अलग अलग प्रकार के भगवान है। दक्षिण भारत में भी एक व्यक्ति है जिन्होंने 20 साल LIC के लिए काम किया और एक दिन उन्हें साक्षात्कार हो गया कि वो भगवान है और उनका भी कार्य चल रहा है, बहुत सारा धन है, बहुत सारे अनुयायी हैं, वे अपने आप को कल्कि भगवान कहते हैं। तो ऐसे चल रहा है। तो यद्यपि कोई व्यक्ति अगर हमको कहे साधारण रूप से कि मैं भगवान हूं, तो क्योंकि भगवान की क्या परिभाषा, भगवान कौन है, अति मर्त्यानी, भगवान के जो कार्यकलाप है वो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, अद्भुत श्रृंगम। तो जिस प्रकार से भगवान नृसिंहदेव यहां पर आए ये स्वयं प्रमाण है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान की लीला जैसे आप सब जानते हैं, भगवान यहां क्यों आते हैं, भगवान आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने भक्तों की रक्षा के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए भगवान यहां पर आए। तो यही भगवान का आने का कारण है। तो भगवान यहां हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आए, विनाश करने के लिए आए। आज सुबह प्रातः श्रीमद् भागवतम कक्षा में हम पढ़ रहे थे कैसे भगवान आए, और भगवान ने खेलते खेलते, जैसे हम स्तुति में कहते हैं दलिता हिरण्याकशिपु तनु ब्रिंगम ब्रिंगम, जैसे एक बलवान शक्तिशाली व्यक्ति ब्रिंग ब्रिंग मतलब भौरा, एक भौरे को अपने दो उंगलियों के बीच में मसल देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तव में एक भौरे को मसलना ये थोड़ा चिंता का विषय, क्योंकि भौरा काटता है ना, काटता है। इसी तरह से हिरण्यकशिपु ऐसा ही भौरा था जो काट सकता है, लेकिन भगवान नृसिंहदेव ने उसको बहुत ही आसानी से कुचल दिया। तो हम देखते हैं वर्णन है कि कैसे हिरण्यकशिपु बहुत महान असुर, असुरों के सभी लक्षण उसमें हैं, मॉडल आइडियल। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान आसुरिक वृत्तियों का वर्णन करते हैं, क्या है ये आशीर्वाद, पूरा अध्याय है 16वें अध्याय, और ये सारे लक्षण हम देखेंगे। भगवान कहते हैं दम्भो धर्मो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य आसुरिम संपदम पार्थ संपद आसुरिम। तो दम्भ दर्प अभिमान ये सारे भरपूर पूर्ण मात्रा में ये उसका स्वभाव है कि मैं ही भगवान हूं। तो हमने देखा कि कैसे एक घोर तपस्या करके वे तीनों तीन लोगों का आधिपत्य प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों तीन लोगों का आधिपत्य प्राप्त करते हैं, और फिर ये तीनों तीन ब्रह्मांडों को परेशान कर रहे हैं। तो ये सब वर्णन करते हैं भगवान भगवद गीता में 16वें अध्याय में। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ईश्वर मैं हूं, मैं ही भोगता हूं, ये जगत पूरे मेरे आनंद के लिए है। तो ये स्थिति थी हिरण्यकशिपु की, सारे देवताओं को उसने सेवा में लगा दिया था, इंद्र चंद्र सूर्य इत्यादि सब हिरण्यकशिपु की सेवा में रत थे। अहम भोगी सिद्धो अहम, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, इस प्रकार का सारे लक्षण हिरण्यकशिपु में। तो भगवान यहां आके बताते हैं कि ये जो भी बल है वो बल वास्तव में उनका है, और भगवान अपनी लीला से एक ही क्षण में हिरण्यकशिपु का सारा बल, सारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति, जीवन प्राण सब कुछ एक ही क्षण में समाप्त कर देते हैं। शुरुआत में भगवान खेलते हैं थोड़ा सा हिरण्यकशिपु के साथ, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति भौरे को मसल देता है, ऐसे भगवान तुरंत ही हिरण्यकशिपु का प्राण हर लेते हैं। तो भगवान का यहां आने का एक कारण है विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है भगवान का आने का। भगवान का मुख्य कारण है यहां पर परित्राणाय साधु नाम। भगवान हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान की अनंत शक्ति है, वैदिक शास्त्र में बताया है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान को किसी प्रकार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस जगत में हमारी स्थिति ऐसी है, हमें कार्य करना पड़ता है किसी भी चीज का पालन पोषण करने के लिए, संहार करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, लेकिन भगवान की स्थिति नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, भगवान कोई कार्य करते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की असंख्य शक्तियां हैं जो कार्य करती, पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते। तो भगवान अपनी ये अनंत शक्तियों से कार्य कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु का वध करना, भगवान चाहे तो एक हार्ट अटैक दे सकते हैं, या भगवान के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो पर्याप्त है हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, लेकिन भगवान का यहां आने का मुख्य कारण क्या है? भगवान के 5 वर्ष के अनन्य भक्त श्री प्रहलाद महाराज, महाभागवत महान, तो उनके वचनों के कारण भगवान यहां पर प्रकट होते हैं। इस पूरे वार्तालाप में हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने के लिए तत्पर है, तो हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 5 वर्ष का बालक और ऐसा भक्त। हम देखते हैं माता पिता तो 5 वर्ष के बालक को तो बहुत लालन पालन करते हैं, उनको कभी मारते नहीं है, या उनके भलाई के लिए उनको मारना पड़े तो थोड़ा सा डांटना धमकाना थोड़ा सा, लेकिन जान से मार देना कोई पिता ऐसा नहीं करेगा कि 5 वर्ष के बालक को मार दे। लेकिन हिरण्यकशिपु यहां तत्पर। हम देखते विश्व की सरकार के सभी नियम भी देख लीजिए, कोई सरकार 5 वर्ष के बालक को मारने का दंड नहीं देती है, चाहे उसने कुछ भी कर लिया है, उसने कोई अपराध किया है बड़ा, फिर 5 साल के बालक को कुछ परिवर्तन होने के लिए कुछ सजा दी जाएगी, लेकिन मारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन हम यहां देखते हिरण्यकशिपु तत्पर है प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, तो बहुत मारने का प्रयास करते हैं, उनको पर्वत से नीचे फेंकते हैं, जहरीले सर्पों के बीच में रखते हैं, हाथी से कुचलने का प्रयत्न करते हैं, नुकीले हथियार से मारने का प्रयत्न करते हैं, सब प्रकार से उन्होंने प्रयत्न कर लिया। लेकिन प्रहलाद महाराज अब भयम पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में स्थित हैं। तो ये सब प्रयत्न करने के बाद हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि ये तीनों तीन लोगों का बल मेरे पास है, मैं इन तीनों तीन लोगों का स्वामी हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार पा रहा हूं, तो तुम्हारी शक्ति का क्या कारण है? ये प्रहलाद महाराज को उन्होंने प्रश्न किया। तो प्रहलाद महाराज वहां उन्हें उत्तर देते हैं कि आपकी शक्ति और मेरी शक्ति दोनों का एक ही कारण है, वो है भगवान विष्णु। जैसे भगवान कहते हैं शक्ति शक्ति मताम अस्मि, जो भी जगत में बलवान है, जो भी शक्तिमान है, उसका बल कहां से है? भगवान कृष्ण नृसिंहदेव, भगवान गीता गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, हर एक चीज की उत्पत्ति मुझसे है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के सामने वास्तविक सत्य प्रकट करते हैं कि तुम्हारी और मेरी शक्ति का स्रोत है भगवान विष्णु, तुम उसे नहीं जानते हो, मैं इसे जानता हूं। तो हम देखते हैं कि वो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए क्यों तत्पर थे, क्या ऐसा कारण था। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, ऐसा तो क्या कारण था कि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार है? तो एक ही दोष था प्रहलाद महाराज का, कि वो भगवान के अनन्य भक्त थे, विष्णु भक्त, ये दोष था। तो हम देखते हैं जगत में स्थिति है, सब कुछ आप कर लीजिए लेकिन भगवान की भक्ति ये नहीं करना है। आप घर छोड़कर अमेरिका चले जाइए, 10 साल तक वापस नहीं आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यद्यपि आप पूर्ण रूप से भगवान की सेवा को स्वीकार करेंगे तो महासंग्राम। तो ये पूर्ण रूप से भौतिक चेतना का लक्षण हम यहां देख रहे हैं। तो ये सामान्यतः इस जगत में व्याप्त है। हिरण्यकशिपु भी सोचता था कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में कि इस प्रकार के व्यक्ति यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और सोचते मैं पुण्यवान व्यक्ति हूं। इसी प्रकार से हम देखते हैं समाज में, हम भक्ति कर रहे हैं, हम यज्ञ करेंगे, हम सिखाएंगे कैसे भक्ति करना, लेकिन भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार नहीं है, ये सीधी थी। तो प्रहलाद महाराज का एक ही दोष है, वो भगवान के अनन्य भक्त और परम सत्य को यथारूप प्रकट करने वाले, वे जरा भी भयभीत नहीं हुए। हिरण्यकशिपु तीनों तीन लोगों के स्वामी, सारे देवता सब भयभीत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान क्या वरदान मांगना, इस जगत में सभी लोग भौतिक चीज भौतिक आकांक्षाओं के पीछे पागल है ना। सब लोग चाहते हैं एक घर है दो घर हो जाए, एक गाड़ी है दो गाड़ी हो जाए, एक डिग्री है दो डिग्री हो जाए, बैचलर है तो मास्टर भी होना चाहिए, PhD भी होना चाहिए। इस प्रकार से हमें लगता है इस तरह से हम सुखी रहेंगे, हमारे पास कम धन है इसीलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरा सैलरी कम है तो थोड़ा सा परिश्रम अभी भक्ति नहीं करूंगा और थोड़ा इस भौतिक शिक्षण में या भौतिक प्रमोशन के लिए मैं प्रयत्न करूंगा और फिर मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, मेरा पोजीशन बढ़ जाएगा, फिर मैं बहुत अच्छे से प्रगति करूंगा और इस तरह से मैं सुखी रहूंगा, या भक्ति नहीं भी करूंगा फिर भी भौतिक चीज प्राप्त करने से मैं सुखी रहूंगा, ये हमारी सामान्यतया चेतना है। तो जब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज से पूछ रहे हैं कि आप मांगो, तो प्रहलाद महाराज ये वर्णन करते हैं कि जगत में हर एक व्यक्ति धन संपत्ति यश सुंदरता इन सब को बढ़ाने में लगा है और इस तरह सोचता है कि इससे वो सुखी रहेगा, लेकिन कितना स्पष्ट उदाहरण है कि मेरे पिता इस क्षेत्र में सबसे उत्तम थे, उनकी तुलना में और कोई नहीं है, उनके जितना धन उनके जितना बल उनकी जितनी संपत्ति किसी की नहीं है, लेकिन भगवान आपने सब कुछ एक ही क्षण में समाप्त कर दिया, तो मैं क्या मांगू आपसे, ये मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो हम देखते हैं हम भी भगवान के पास आते हैं इसी तरह से ना, मांगते हैं भगवान हमको ये दे दीजिए। आज तो बहुत महत्वपूर्ण दिन, हाथ तो अच्छा, हाथ तो मांगेंगे तो लाभ हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इसी को तो निकालना है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपकी प्रकृति के तीन गुण हैं और इन तीन गुणों से अनेक अनेक शरीर निर्मित होते हैं, और उस शरीर में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, रजो तमो सतो गुण से प्रभावित। तो शरीर और मन, इन सब की क्रियाओं से एक व्यक्ति भौतिक चीजें, भौतिक आकांक्षाओं के पीछे लालायित हो जाता है, और इस प्रकार से जन्म जन्मांतर दुख भोग रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये है जो भौतिक अभिलाषाएं करना, जिसका कोई आधार नहीं है, इसे छोड़ना है। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव से कहते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज का दोष क्या था, वो भगवान के भक्त थे और उन्होंने परम सत्य को, भगवान के परम सत्य को यथारूप प्रस्तुत किया निरर्भाव से, ये उनका दोष। और हम देखते हैं ये जगत की स्थिति है, यद्यपि आप किसी को परम सत्य या सत्यवाणी बताते हैं तो वो पूरा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्या स्थिति है, दुराशया। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु कहते हैं उन्होंने अपने विचार से भौतिक जगत में बड़ी बड़ी आशाएं बांधी होती है, ऐसा होगा, इससे मैं सुखी रहूंगा और मैं तो सही मार्ग पे ही हूं। और जब ये परम सत्य उनके सामने प्रकट किया जाता है कि भौतिक जीवन का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है, तो उसको सहन नहीं कर पाते। इसलिए हम देखते हैं शुद्ध भक्ति जब प्रचार करते हैं बहुत लोग आकर्षित नहीं होते, मिक्स्ड चीज अच्छी लगती है। तो प्रहलाद महाराज यहां पर भगवान के महान भक्त, महाभागवत, महान भागवत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत मतलब जिसका संबंध भगवान से है, जैसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत। तो ये भागवत मतलब जिसका संबंध केवल भगवान से, अन्यथा उसमें और कोई चीज नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कौन है, महाभागवत महान, भगवान के महान भक्त हैं। तो ये उनका लक्षण है कि उन्होंने सत्य को, सत्यवाणी को यथारूप प्रस्तुत किया बिना किसी डर के, सबके हित के लिए। 5 साल के बालक है और उनके पिता विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तो ये स्थिति थी प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के बीच में। विश्व का सबसे पहला नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने पिता के आज्ञा का पालन नहीं किया। और बहुत स्पष्ट, जैसे हम देखते हैं जब पहले अवसर में हिरण्यकशिपु, बहुत प्रेम है, हर एक पिता को पुत्र से बहुत प्रेम होता है, स्वाभाविक है। और पिता वही चाहता है, मतलब पिता चाहता है जो मैं कर रहा हूं मेरा पुत्र करे, ये पिता की इच्छा होती है। जैसे पिता डॉक्टर है तो पहले सोच लेते मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, कुछ भी हो जाए उसके लिए सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन डॉक्टर ही बनाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल है और इसका विस्तार करना है, बहुत सारा स्थिति है। अगर मैं इंजीनियर हूं तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इस प्रकार से कोई कसाई है तो वो सोचता है मेरा बच्चा एक, वो सिखाते हैं कैसे चिकन का गला काटना, वो चाहते हैं, क्योंकि व्यापार जो मेरा है, इतनी बड़ी जो मैंने व्यवस्था रखी है, उस व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना, ये उनका हृदय होता है। जो मैं कर रहा हूं वही मेरा बच्चा करे, क्योंकि उसकी इंद्र तृप्ति का विस्तार है वो। मैं बाइक में नहीं घूम पाया, तुम जरूर घूमना। मैं अमेरिका नहीं गया, तुम जरूर जाना। इस प्रकार से हम देखते हैं। और आज की स्थिति में बच्चे क्या पहन रहे हैं और कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितने गर्लफ्रेंड हैं, माता पिता कोई आपत्ति नहीं करते, क्योंकि वास्तव में उनके हृदय में यह अभिलाषा है। बच्चे किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उससे आप जांच सकते हैं माता पिता क्या हृदय है, आपत्ति नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं हम नहीं कर पाए, या हम इस समाज में, हमारी उम्र ऐसी है, अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा। ठीक है, बच्चे करें, तो ये वर्तमान स्थिति, यही लक्षण हिरण्यकशिपु का था। हिरण्यकशिपु यही सोचता था, मैं जितना बड़ा असुर हूं वैसा ही मेरा बालक बनना चाहिए। तो पूरी व्यवस्था, उन्होंने दो विशेष अध्यापकों को रखा शंड और अमर का शिक्षण देने के लिए। तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने पहली बार बुलाया और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद बताओ आपने क्या सीखा, आप जो शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सब प्रकार का उच्च स्तर का शिक्षण है, साम दाम दंड भेद, तो आपने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज बिना किसी भय के वहां अपने पिता को संबोधित करते, पिता को नहीं कहते हैं आदरणीय पिताश्री, ये नहीं कहते, वो तुरंत स्पष्ट रूप से कहते हैं, न साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, हे असुरों में श्रेष्ठ, ऐसे संबोधित करते हैं। कौन पुत्र कह सकता है कि आप असुरों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बिना किसी भय के, यद्यपि और कोई ये कहता वहां पर तो पता नहीं क्या स्थिति होती, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ, न साधु मन्ये, आपका जो विचार है उससे मैं सहमत नहीं हूं। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया और आप बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपका जीवन कैसा है, चिंताओं से भरा हुआ, आप रात को सो भी नहीं सकते। वो कहते हैं सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, क्योंकि आपने असत स्थान को सत मान लिया है, आप इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, तो भगवान की शक्ति से केवल आप वहां पर हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अभी आप पूरा इसी विश्वास में इसी चीज को स्थित करना चाहते हैं कि मैं बिना किसी प्रतिरोधी के अनपैरेलल्ड स्वामी हूं यहां का। लेकिन आपका दुर्भाग्य यह है कि आपके स्वामित्व को आपका 5 साल का बालक चुनौती कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन एक 5 साल का बालक खुद का पुत्र उनको बोल रहा है। सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, क्योंकि असत स्थान को आपने सत मान लिया, इसीलिए आप हमेशा चिंताओं में हैं, आप चिंता रहित नहीं है, 5 साल का बालक ही आपको चिंता दे रहा है। हित्वात्म पातम गृहमंध कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वो कहते हैं कि आपका जो जीवन है वो तो आत्मपातम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, लेकिन इस प्रकार का जीवन जो है पूरा भोग विलास में लिप्त, ये आत्मा का भी पतन कर देता है। किस प्रकार से, अनंत कोटि जन्मों के लिए वो भव बंधन में फंस जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं भवकूप, ऐसे कूप में वो गिर जाता है। गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकाश्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, आत्मा का भी नाश कर देते हैं, ऐसे हैं काम क्रोध तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। तो हिरण्यकशिपु का जीवन था, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं इस प्रकार का जीवन शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए और वन में जाके भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज स्पष्ट बोल दिए हिरण्यकशिपु को। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, भगवान नृसिंहदेव का यहाँ प्राकट्य का कारण है उनके महान भक्त प्रहलाद महाराज, उनके कारण भगवान यहाँ पर आए हैं। तो भगवान नृसिंहदेव के प्राकट्य को समझना और भगवान नृसिंहदेव कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करे उसको जानने के लिए उनके भक्त को समझना होगा। तो प्रहलाद महाराज को समझना होगा उनकी दिव्य वाणी से। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद में अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से बहुत सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं प्रहलाद महाराज की। तो प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को प्रकट करते हैं और आगे वर्णन करते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, आपको लगता है आप बहुत स्वार्थी हैं, इस जगत को पूरा प्राप्त कर लिया है, लेकिन आप वास्तव में अपना स्वार्थ नहीं जानते हैं। हम सबका वास्तविक स्वार्थ है भगवत प्राप्ति, विष्णु, ये हम सबका स्वार्थ है। और अज्ञान में हम सोच रहे हैं मेरा स्वार्थ क्या है, धन भाई का भी धन मैं ले लूं, पड़ोसी की भूमि भी मैं ले लूं, सब एकत्रित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें लगता है ये हमारा अर्थ, स्व अर्थ, स्वार्थ मतलब अर्थ, जिससे मुझे लाभ होगा। तो मेरा लाभ क्या है, पोजीशन, ये वो। लेकिन प्रहलाद महाराज यहां बता रहे हैं कि ये अज्ञान है। श्री प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने शरीर को बचाना चाहता है, क्या कारण है? जैसे कोई हमको मारने आएगा तो अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि हम इस शरीर में हैं। ये शरीर हमें इसलिए प्रिय है क्योंकि जीवात्मा इस शरीर में है और जीवात्मा का मूल आधार है भगवान या परमात्मा। तो जो मूल आसक्ति है वो भगवान से है, ये हमारा स्वार्थ है, ये हम नहीं जानते। तो प्रयत्न कर रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने पिता को सिखाने के लिए कि आप नहीं जानते आपका स्वार्थ क्या है, ये जान लीजिए। स्वार्थ है भगवान विष्णु, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिनः। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि आपका जो अर्थ है वो बाहर बाह्य चीजों में है। अंधा यथा अंधे उपनियमाना तेपि सुतंत्रा उर्दाम निबद्धा। प्रकृति के तीनों गुणों से पूरा बंधे हुए हैं और आप सोच रहे आप मुक्त हैं। हम सबको ऐसा लगता है स्वतंत्र है, हम हमारी इच्छा के स्वामी हैं। इसलिए हम प्लानिंग करते हैं, आज ऐसा हूं, 10 साल के बाद ऐसा होऊंगा, 50 साल के बाद ऐसा होऊंगा, रिटायरमेंट के बाद भक्ति करूंगा, है ना। सब हम मंदिर आते हैं तो कहते हैं प्रभु जी रिटायरमेंट के बाद पूरा भगवान की सेवा में लगना है, अभी अभी प्लानिंग चल रहा है, आज ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो उनको लगता है हम स्वतंत्र हैं और हमारे प्लानिंग हमारी योजना से सुखी रहेंगे। लेकिन यहां प्रहलाद महाराज बता रहे अंधा यथा अंधे, वे अंधे हैं, वे नहीं जानते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों से वे पूरा बंधे हुए हैं। और प्रकृति के गुण एक शरीर देते हैं, एक मन देते हैं, अलग अलग स्थितियां देते हैं, वो सब व्यवस्थाओं के अनुसार, वो प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है। उसको लग रहा है मैं कार्य कर रहा हूं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण सब कुछ करवा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो वो सोचता है मैं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने पिता को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन स्थिति कैसी है? दोनों ही अटल, ना प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को बदल पाए, ना हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बदल पाए। प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर न कृष्णे परतस्वतो वा। कृष्ण में मति लगना, आपकी मति जो दुर्मति है, एक भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए, संभव नहीं है ऐसे भौतिकतावादी लोगों में, क्योंकि उनकी वास्तविक मति जो चेतना है वो ये भोग विलास ने अपहरण कर लिया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसाम, क्योंकि उनकी जो पूरी आसक्ति है वो बहुत लिप्त है, छोड़ नहीं सकते, वो जान रहे इससे ज्यादा सुख नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं और किसी को छोड़ने भी नहीं देंगे। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई रस नहीं मिला, लेकिन तुम्हें जरूर मिलेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग, शुद्ध भक्ति मार्ग, मार्ग पे जाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता, अवरोध करते हैं। तो ये स्थिति, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मतिर न कृष्णे परतस्वतो वा। भगवान में मति स्वयं के प्रयास से या अन्य कोई आपको मदद करेगा फिर भी लगेगी नहीं, क्योंकि आप पूरा ये भोग ऐश्वर्य में लिप्त है। और हमारा वर्तमान पूरा जगत यही है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लास सब में, है ना। नंबर वन कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत सारे अच्छे मार्क्स आएंगे, उससे आप बहुत अच्छी कॉलेज में प्रवेश करेंगे, और बहुत अच्छी कॉलेज में बहुत प्रयत्न करेंगे उससे आपको ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा, और बहुत पैसा मिलेगा। अभी उस पैसे के लिए भले ही 12 15 20 घंटे कार्य कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आपको बहुत पैसा मिलेगा और उस बहुत पैसे से आप बहुत सारी चीजें एकत्रित करेंगे और इससे आप सुखी रहेंगे। ये शिक्षा बचपन से दी जाती है ना। टेंथ कर लो फिर सुखी रहोगे, ट्वेल्थ कर लो सुखी रहोगे, कॉलेज कर लो सुखी रहोगे, जॉब मिल जाए सुखी रहोगे, वो भी सुखी नहीं है, हम भी सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो ये प्राणमात बता रहे हैं ये की स्थिति क्या है, लेकिन ये इतना अत्यधिक आसक्ति है पूरा जीवन। हाँ, जैसे हमारे आचार्य लगते हैं, बीफले सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे, चपल सुख के लिए पूरा जीवन मैंने बेकार लोगों की सेवा की, मुझे कोई सुख नहीं मिला, फिर भी मैं नहीं समझ रहा हूं और अगली पीढ़ी को भी नहीं सिखा रहा हूं। हमारा इतना दुराशा है कि मेरे जीवन में, मतलब कोई मैच होता ना, मैच हार गए लेकिन हाईलाइट में जीतेंगे, ये स्थिति है। मेरा जीवन कभी सुखी नहीं मिला लेकिन मेरा पुत्र के जीवन में वो डॉक्टर बन के सुखी रहेगा, वो धन संपत्ति कमाएगा एकत्र, जरूर सुखी रहे, मैं तो सुखी नहीं रहा लेकिन वो जरूर करेगा। तो ये हमारा दुराशा है। तो प्लान मार कहते दुराशा ये बहिर्थ मार, ऐसे व्यक्तियों को सिखाना या वो स्वयं प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करेंगे लेकिन मन नहीं लगेगा उनका, और बहुत लोग आके उनको प्रयास करेंगे कि समझिए जीवन का उद्देश्य है भगवान की पूर्ण शरणागति लेना, रुचि नहीं उत्पन्न होती, छोड़ नहीं सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, टीवी नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते, ये स्थिति है। हाँ, अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम, प्रहलाद महाराज कहते क्यों अदांत गोभीर, उनकी इंद्रिया अनकंट्रोल अनियंत्रित है और ये अनियंत्रित इंद्रियों कारण विषताम तमिश्रम, वे नरकीय जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन जिस प्रकार से इंद्रिय भोग कर रहे हैं, उनका एक और दूसरा शरीर तैयार हो रहा है और उस दूसरे शरीर में ऐसा ही संग मिलेगा और इस प्रकार से एक बहुत भीषण अंधकार में नारकीय जीवन की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज महान भक्त होने के कारण एकदम विनम्रता से भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करें कि हे भगवान नृसिंहदेव, मेरा जन्म मेरे कर्म फलों के कारण एक असुर परिवार में हुआ। क्यों असुर परिवार में हुआ? क्योंकि मेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने बुरे हैं, तो मैं इतना अभागा हूं कि मुझे कोई भक्तों का संग नहीं मिला। हम देखते हैं जनरली ऐसे वातावरण जब हमारा जन्म होता है जहां पर बचपन से घर में मांसाहार नशा जुआ व्याभिचार हो रहा है उस घर में, तो वही वृत्ति हम में आती है, वहां पर भगवत भक्ति या भगवान में हमारा मन लगे ऐसा होता नहीं है, बहुत कठिन है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान आपकी विशेष कृपा हो गई मुझ पर कि मैं असुर योनि में जन्म लिया लेकिन फिर भी आपके चरण कमलों को प्राप्त किया। प्राप्त किया मतलब जब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी इत्यादि देवता सब डर रहे हैं भगवान के इस क्रोध से, ये भगवान के सामने नहीं जाते, भगवान का कितना क्रोध था। हाँ, भगवान की जो गर्जना थी आज हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड को कंपित कर रही है, तो हिरण्यकशिपु को लिया अपने गोद में और उसका पूरा पेट चीर दिया और जो आंत है उसकी माला बना ली भगवान ने और उसके शरीर को फेंक दिया और जितने भी और सैनिक थे सबको भगवान ने मार दिया, उसके बाद भी भगवान तृप्त नहीं है, इतना क्रोध है, क्योंकि जो भक्त के प्रति अत्याचार भगवान नहीं सहन कर रहे, इतना क्रोध है भगवान का। तो भगवान को कैसे शांत करना? तो ब्रह्मा जी इत्यादि देवता कौन जाएगा आगे, लक्ष्मी जी जो भगवान की लीला शक्ति भगवान की नित्य शक्ति, तो वे भी विचार कर रहे हैं, ये प्रश्न भगवान लिखते हैं क्योंकि भगवान की लीला शक्ति के कारण, ये भगवान की जो विशेष लीला है उसके कारण वे सोच रहे हैं कैसे भगवान के पास जाए। तो प्रहलाद महाराज को कहा जाता है कि आप जाके भगवान को शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान अपना हाथ प्रहलाद महाराज के सिर पर रखते हैं, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं वहां पर कि ये सौभाग्य तो ब्रह्मा शिव जी किसी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है और मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, फिर भी भगवान आपकी विशेष कृपा मुझ पर है। तो ये प्रहलाद महाराज की उनका पूरा भाव है जो हमें समझना है। भगवान का आने का कारण है प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज को समझने के लिए हमें उनकी शिक्षाओं को समझना होगा। तो ऐसे बहुत सारा शिक्षा श्रीमद् भागवतम में है। तो प्रहलाद महाराज का क्या भाव है, हम यहां पर इस भाव को अंगीकार करने के लिए आए, हम इसलिए नहीं आए हैं बस मनोरंजन, कोई दिवी मॉल जाते हैं, मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कोकोला पीते हैं और वो लगता है आनंद है, तो ये थोड़ा पुण्य प्रकार का मनोरंजन कि हम कभी कभी मंदिर जाएंगे और थोड़ा सा कुछ सुनेंगे, हाँ और ठीक है फिर जीवन एज इट इज चल रहा है। तो प्रहलाद महाराज जो भक्ति देने के लिए आए हैं वो है पूर्ण शरणागति की भक्ति, ये पूरी आस्तिक सभ्यता का बहिष्कार कर रहे हैं। कोई भी पुत्र चाहेगा पिता की संपत्ति मैं ले लूं, अगर पिता धनी है तो कोई पुत्र उनका विरोध नहीं करेगा, बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज पूरा ही उसको बहिष्कृत कर दिए, नहीं चाहिए ये। हाँ प्रहलाद महाराज हमको सिखा रहे हैं, और प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि ये शिक्षा केवल अंगीकार करके हमारे तक सीमित रखे, प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज इन शिक्षाओं में कहते हैं कि हे नृसिंहदेव मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है, नहीं वो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि मैं सदा आपकी महिमा का गुणगान करने में नियुक्त हूं, ये भवबंधन मुझे नहीं बांध सकते, ये प्रकृति किसको बांध सकती, जो भगवान से विमुख है जो अपराधी है उसको पुलिस पकड़ती है, तो मैं सदा आपके दिव्य लीलाओं का गुणगान करने में आपकी महिमा का गुणगान करने में नियुक्त हूं, यह भवबंधन मुझे नहीं पकड़ सकते, लेकिन मुझे चिंता क्या है, नहीं वो द्विजे पर दुरत्य वही तरण्यास तद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ते सोचे तत विमुख चेत साम इंद्रियार्थान माया सुखाय भरमुद्भव तो विमूढ़ान सोचे तत्व विमुख चेत साम। इस जगत में अधिकांश लोग उनकी चेतना कैसी, भगवान से विमुख, भगवान की पूरी शरणागति स्वीकार करना नहीं चाहते। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं उनके बारे में चिंतित हूं, और क्या उनकी चेतना है माया सुख, जो सुख नहीं है वो उनको सुख लग रहा है, तो उसमें पूरा लिप्त है और उसके लिए बहुत कठोर परिश्रम अथक प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा जगत आप देखेंगे, अभी अभी यही स्थिति है, गर्व से कहते हैं मैं 15 घंटे काम करता हूं, 5 घंटे सोता हूं, वाह क्या बात है, 5 ही घंटे सोता हूं, तो ये किस लिए, भरम उद्भव तो विमूढ़ान किस लिए, हम देखते हैं स्थिति हम तक सीमित नहीं, अभी बच्चों की भी स्थिति है, 5th स्टैंडर्ड में 7 से 1-2 बजे तक स्कूल, स्कूल से आने के बाद घर पे हुआ तो वरना टिफिन में ही खिला दिया, और 4 बजे से कोचिंग, और फिर 8 बजे आता है, और फिर 8 से 10 होमवर्क, और फिर चिंता है कल क्या होगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, और उसके पास बहुत, और हमारा भी सामान्य प्रतिष्ठा होगा, हम बता सकते हैं सबको। तो माया सुखाय भरम उद्भव तो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज कहते ये है, इसलिए भार उठा रहे, भार उठा रहे, भार उठा रहे, नंबर 1 आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सोएंगे नहीं, नंबर 1, और इससे मैं सुखी रहूंगा, ये इस जगत का स्वभाव है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हमें, प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मैं प्रचार करना चाहता हूं, वास्तव में इस जगत का सारा आधार आप है, और बिना आपके चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लिए इस जगत में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, यह स्पष्ट समझना होगा। इस जगत के आधार स्रोत कृष्ण नृसिंह है, और जब तक एक व्यक्ति पूर्ण रूप से उनका आश्रय नहीं लेता कभी भी सुखी नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज उदाहरण से बताते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, जैसे माता पिता चाहे बच्चे को नहीं बचा सकते, डॉक्टर चाहे अपने मरीज को नहीं बचा सकता, नाविक चाहे अपनी नाव को नहीं बचा सकता, जब तक भगवान आप उसको संरक्षण नहीं प्रदान करते, त्वद उपेक्षितानाम, जिसकी उपेक्षा आपने कर दी तो कोई उसको नहीं बचा सकता, वो कितना भी प्रयास कर ले, वो सोचता है कि ये करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये प्रयास करने से सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो प्रयास ही और बड़ा दुख हो जाता है, जो प्रयास करता है समस्या को सुलझाने के लिए, वो प्रयास ही उसके लिए दुख हो जाता है। हाँ, हम सोचते हैं अभी बहुत बड़ा घर बना लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। घर बनाने के बाद और समस्या हो जाती है, पहले सुखी था। तो प्रहलाद महाराज ये वर्णन करते हैं कि जब तक कोई आपके चरण कमलों का पूर्ण आश्रय नहीं स्वीकार करता है, वो कभी भी सुखी नहीं होगा। ये शिक्षा प्रचार करना है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायेण देव मुनयो स्वमिमुक्ति काम। ऐसे बहुत सारे मुनिगण हैं जो केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचते हैं। मौनम चरन्ति, कुछ नहीं बोलूंगा और विरोध भी नहीं करूंगा। अगर कोई भक्ति प्रचार नहीं कर रहा है, कोई कह रहा है योग ही सब कुछ है, मेडिटेशन करो, लाइट पे करो, मैं भगवान हूं, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। जिसको जो मार्ग करना है करने दो, मैं अपने बारे में सोचता हूं। या भक्ति के नाम पे अभक्ति प्रचार करते हैं, मुझे क्या लेना देना, मैं अपने बारे में सोच, आप अपने बारे में कीजिए। प्रहलाद महाराज कह रहे नहीं, मौनम चरन्ति, इस प्रकार से मौन नहीं। क्योंकि स्वविमुक्ति कामा नहीं है। सब लोगों को वास्तविक शुद्ध भक्ति मिले इसके लिए प्रचार करना है। प्रहलाद महाराज का पूरा हृदय है और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद पूरा इस भाव से भावित है। हम सब जानते हैं कि 70 साल की उम्र पे कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, विशेष रूप से धाम छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद गए वृंदावन छोड़ के। किस लिए गए? भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए, जिससे हम लोग जो विमुख चेतसाम है, जो भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार करना चाहते थे, हमें अवसर मिले। तो वास्तव में हम सबको समझना होगा, सबसे पहले तो हमें जन्म सार्थक करी शुद्ध भक्ति को स्वीकार करना होगा। जैसे सारे आचार्य बताए, भगवान के नामों का नियमित जप करना, सभी नियम पालन करना, इंद्रिय विषयों से दूर रहना, अभक्तों के संग से दूर रहना, इस प्रकार का पूरा जीवन स्वीकार करना, और उसके पश्चात इसको प्रचार करने में अपने आप को पूरा नियुक्त करना। एक भक्त जब गंभीर हो जाता है तो उससे आशा होती है। श्रील प्रभुपाद बताए कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, अभी मैं कुछ समय के बाद चला जाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है ये बच्चे लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये आंदोलन नहीं रुकेगा, क्योंकि ये आंदोलन इस पूरे विश्व को शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद बताए ये आंदोलन पूरे विश्व के इतिहास में सम्मानित होगा। सबसे अंधकार के युग से, अंधकार के समय से ये लोगों को बचाएगा। तो ये शुद्ध आंदोलन है। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा अनुसार हम सबको प्रयत्न करना है। सबसे पहले अपना जीवन सार्थक करना है, और सार्थक करने के बाद बस संडे टू संडे नहीं, पूरा प्रयास करना है कि कैसे धन प्राण संपत्ति सब कुछ कायेन मनसा वाचा भगवान की सेवा में नियुक्त करना। जो निवृत्त हो चुके हो पूर्ण रूप से प्रवृत्त होना है भगवान की सेवा में। तब हमें प्रहलाद महाराज जैसे महान भागवतों की कृपा होगी और इससे भगवत प्राप्ति। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, जब भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं वरदान मांगो, तो उसमें प्रहलाद महाराज जो दो तीन महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, सबसे पहले तो ये शिक्षा देते हैं कि यद्यपि भगवान आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो मेरे हृदय में लेश मात्र भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको विनाश कर दीजिए, ये मैं चाहता हूं। यदि दास्यसि मे कामान वराम स्तम वरतर्षभ कामानाम हृदि असमरोहम भवतस्तु फ्रिणे वरम। कामान, अगर आप मेरी कोई इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं, तो मेरे हृदय के अंतकरण में छोटी सी भी अगर भौतिक इच्छाएं हैं उसको आप समाप्त कर दीजिए। उसके लिए जो भी कष्ट आए मैं तैयार हूं उस अनर्थ को निकालने के लिए। तो ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रील प्रभुपाद अपने एक काव्य में इसको संस्तुत किए, एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम अनुय प्रसंगात प्रपतान प्रसंगात आ, कृत्वात्मसात् सुरर्षिना भगवन् गृहीता कोन्यो विसृजे तव भृत्य सेवा। तो ये श्लोक है, मेरा पूर्ण स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे पूर्व कर्मों के कारण मैं ऐसे कुएं में गिर रहा था जहां पर जहरीले सर्प हैं। ऐसे लोग जो भौतिकतावादी लोग हैं उनकी तुलना करते हैं कि जो जैसे सांप डसता है वैसे भौतिक लोगों का जो संग है वो उनको डसता है। तो मैं जन्मों जन्मांतर इस प्रकार के अंधकूप में ही गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, लेकिन भगवान आपके महान भक्त नारद मुनि सुरर्षिना, नारद मुनि की विशेष कृपा हुई और उन्होंने मुझे स्वीकार किया और जीवन की परम सिद्धि हो उसकी शिक्षा दी, तो मैं कैसे उनके चरणों की सेवा छोड़ सकता हूं। तो यद्यपि अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ऐसे महान भक्त की सेवा दीजिए। तो आज हमारे पास भी अवसर है प्रहलाद महाराज की इन शिक्षाओं को साक्षात्कार करना, अपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण करना और इन शिक्षाओं का पूरी शक्ति से उसका प्रचार करना। तो ये जो शिक्षा है श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद में है। आप सब बहुत भाग्यवान हैं, आप सबके घर भगवद्गीता ऑलरेडी है तो आप भाग्यवान हैं, लेकिन आप और भाग्यवान हो सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम को आपके घर ग्रहण कीजिए। तो आज हमारी जो चर्चा है बहुत संक्षिप्त में हुई, लेकिन श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंद में बहुत विस्तार से ये सब शिक्षाओं को दिया है और बार बार उसे हमें सुनना होगा एक शुद्ध भक्त से। हम बहुत लोगों से सुनते हैं, अधिकांश भागवत सप्ताह में ये सब चर्चा ही नहीं होता है। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? तो अगर आपको जानना है इन चीजों को गंभीरता से, तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य है एक एक श्लोक पर, तो उसे पढ़ना होगा। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है या कुछ संशय चुनौती तो आप पूछ सकते हैं। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।